ये रेडियो नेपाल है। हिंदी समाचार में आपका स्वागत है। मैं मीनू प्रधान। आरंभ में आज के मुख्य समाचार। यम पंचक के अंतिम दिन आज परंपरा अनुसार बहनों से टीका और आशीर्वाद लेते हुए मनाया गया भैया दूज का त्योहार। नेपाल में आज कोरोना के 139 नए मामले आए सामने। 396 मरीज हुए संक्रमण मुक्त। संक्रमण मुक्त होने की हालिया दर 97.6%। जिला अदालत परसा से 3 महीने के दरमियान विभिन्न मामलों में सजा सुनाए जाने के बाद फरार रहे 47 लोगों को परसा पुलिस ने किया गिरफ्तार। और पश्चिम अफ्रीकी देश सियरा लियोन में तेल टैंकर विस्फोट होने से 100 से अधिक लोगों की हुई मौत। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका। अब समाचार विस्तार से। यम पंचक अंतर्गत आज अंतिम दिन परंपरा के अनुसार दीदी बहनों से टीका और आशीर्वाद ग्रहण कर भैया दूज पर्व मनाया गया। आज के दिन बहनें अपने भाइयों को विधिपूर्वक यमराज और यमुना की प्रार्थना के साथ भाइयों को टीका लगाती हैं व दीर्घायु सुस्वास्थ्य का आशीर्वाद देती हैं। वहीं भाई अपनी बहनों को अपनी क्षमता अनुसार दक्षिणा उपहार आदि देकर उनके सौभाग्य की कामना करते हैं। इस त्यौहार को मनाने के क्षेत्र अनुसार विविधता पाई जाती है। नेपाल के पहाड़ी व हिमालयी क्षेत्रों में भाइयों को न मुरझाने वाले मखमली फूल की माला पहनाकर सप्तरंगी टीका लगाने का चलन है। वहीं तराई क्षेत्र में माला की और टीका में 7 रंगों की अनिवार्यता नहीं देखी जाती। विशेष रूप से मिथिला में भाइयों को भीगे हुए चावल को पीसकर उसी का टीका माथे पर लगाया जाता है। साथ ही बहनों द्वारा भाइयों के दोनों हाथों पर टीका लगाकर पान सुपारी हर्रे कोहड़े के फूल द्रव्य आदि रखकर उनके दीर्घायु की कामना सहित मंत्रोच्चारण के साथ उनके हाथों को धोती हैं। ये प्रक्रिया 5 बार चलती है। साथ ही जिन भाइयों की सगी बहनें नहीं होती वे भी आमतौर पर रिश्ते में पड़ने वाली किसी भी बहन के यहाँ जाकर टीका लगवाते हैं। इस पर्व को वहाँ भ्रातृ द्वितीया या बोलचाल की भाषा में भरदूतिया भी कहा जाता है। हालांकि काठमांडू में ऐसे भाई जिनकी बहनें नहीं है वे रानी पोखरी स्थित मंदिर में जाकर टीका लगवाते हैं। हर साल रानी पोखरी में स्थित मंदिर को सिर्फ भैया दूज के दिन ही खोला जाता है। इसी तरह जय बागेश्वरी में स्थित खंजनेश्वर महादेव मंदिर में भी ऐसे ही भाई बहन जिनकी सगी बहन या भाई नहीं है वे लोग जाकर टीका लगवाते हैं। वहीं नेवार समुदाय भाई टीका के दिन को कीजा पूजा के रूप में मनाते हैं। भैया दूज के अवसर पर राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने आज सुबह 11:02 के शुभ मुहूर्त पर अपने छोटे भाई देगेंद्र पांडे को टीका लगाया। इसी तरह उपराष्ट्रपति नंद बहादुर पुन ने भी अपनी बहनों से भैया दूज का टीका लगवाया। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की ने भैया दूज के अवसर पर अपनी बहनों से टीका लगवाया। ललितपुर की भैंसे पाटी स्थित अपनी बहन के आवास पर जाकर संचार मंत्री कार्की ने आज सुबह निर्धारित शुभ मुहूर्त पर टीका ग्रहण किया। आज देशभर में कोरोना के 139 नए मामले सामने आए हैं जबकि 396 मरीज संक्रमण मुक्त हुए हैं। वहीं एक संक्रमित की मौत हो गई। अब तक के तथ्यांक अनुसार कोरोना संक्रमण मुक्त होने वालों की हालिया दर 97.6% है। इसी तरह आज देशभर में 1985 लोगों ने वैक्सीन की डोज ली है। ये जानकारी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय ने दी है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ला तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *14## डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी राप्रपा ने 65 जिलों में पार्टी का अधिवेशन संपन्न होने की जानकारी दी। आगामी मार्गशीर्ष 11 गति से 13 गति तक होने जा रहे पार्टी केंद्रीय महाधिवेशन के मद्देनजर राप्रपा ने जिला अधिवेशन जारी रखा है। पार्टी ने कार्तिक 26 गति तक सक्रिय सदस्यों की नामावली को जिलों में भेजने और 7 प्रदेशों में कार्तिक 28 गति कार्य समिति का निर्वाचन करने का निर्देश समिति को दिया है। ये जानकारी केंद्रीय सदस्य सुंदर पांडे ने दी। बांके पुलिस ने नेपालगंज के एक जुए के अड्डे से 4,66,000 रूपये सहित 48 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये जानकारी बांके के प्रहरी प्रमुख प्रमुख उपप्रहरी उपरीक्षक श्याम कृष्ण अधिकारी ने दी। बता दें कि पुलिस ने इस कार्यवाही में कुछ भारतीय नागरिकों को भी गिरफ्तार किया है। तीन महीने के दरमियान जिला अदालत परसा से विभिन्न समय में सजा सुनाए जाने के बाद फरार रहे 47 लोगों को परसा प्रहरी ने गिरफ्तार किया है। उन्हें पुलिस की अलग अलग टोली ने गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, ये जानकारी पुलिस ने दी। पुलिस ने इस साल सावन से आश्विन के दरमियान फरार लोगों को गिरफ्तार किया। ये बात जिला प्रहरी कार्यालय परसा के DSP ओम प्रकाश खनाल ने बताई। उनके मुताबिक उनसे कुल 1,52,47,000 रूपये का जुर्माना भी वसूला गया है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि अन्य फरार लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। बता दें कि पिछले आर्थिक वर्ष में पुलिस ने 80 फरार लोगों को गिरफ्तार किया था, उनमें से 71,86,000 रूपये का जुर्माना भी वसूला गया था। स्यांगजा में इस बार फिर से 29 लोगों में HIV संक्रमण की पुष्टि हुई है। गरों प्राथमिक अस्पताल में परीक्षण के क्रम में 11 लोगों में और जिले से बाहर रहे अस्पतालों में 18 लोगों में HIV संक्रमण देखा गया है। बता दें कि गरों प्राथमिक अस्पताल में जब से ART की सेवा शुरू हुई है तब से अब तक 248 संक्रमितों को औषधि सहित परामर्श दिया जा चुका है। ART सेवा लेने वालों में 121 पुरुष, 117 महिला और 10 बच्चे शामिल हैं। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पश्चिम अफ्रीकी देश सियेरा लियोन की राजधानी फ्री टाउन में कल देर रात दूसरे वाहन से टक्कर के बाद एक तेल टैंकर में हुए विस्फोट में करीब 100 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक अस्पताल के शव गृह विभाग ने कहा है कि आज सुबह तक उन्हें 95 शव मिल चुके हैं। अस्पतालों में भर्ती कई घायलों की गंभीर हालत को देखते हुए मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है। राष्ट्रपति जूलियस माडा बायो संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता में भाग लेने के लिए स्कॉटलैंड में हैं। उन्होंने हादसे पर खेद व्यक्त किया। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि जिन परिवारों ने अपनों को खो दिया है और जो लोग झुलस गए हैं उनके साथ मेरी गहरी सहानुभूति है। उपराष्ट्रपति मोहम्मद जुल्देह जलो ने रात में दो अस्पतालों का दौरा किया और कहा कि सियेरा लियोन की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन एजेंसी और अन्य आपातकाल के मद्देनजर अथक प्रयास करेंगे। बता दें कि इससे पहले भी अफ्रीकी देशों में टैंकर दुर्घटना में सैकड़ों लोगों की मौत हो चुकी है। तेल लूटने के लिए जुटी भीड़ भी धमाके का शिकार हो चुकी है। 2019 में तंजानिया में एक टैंकर विस्फोट में करीब 50 लोग मारे गए थे। 2018 में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में भी ऐसी ही एक घटना घटी थी। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 23.3 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। यम पंचक के अंतिम दिन आज परंपरानुसार बहनों से टीका और आशीर्वाद लेते हुए मनाया गया भैया दूज का त्योहार। नेपाल में आज कोरोना के 139 नए मामले आए सामने, 396 मरीज हुए संक्रमण मुक्त होने की हालिया दर 97.6%। जिला अदालत परसा से तीन महीने के दरमियान विभिन्न मामलों में सजा सुनाए जाने के बाद फरार रहे 47 लोगों को परसा पुलिस ने किया गिरफ्तार। और पश्चिम अफ्रीकी देश सियेरा लियोन में तेल टैंकर विस्फोट होने से 100 से अधिक लोगों की हुई मौत, मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका। इसी के साथ हिंदी समाचार समाप्त हुए। सुनते रहिए रेडियो नेपाल। शुभ रात्रि।